नाटक रेडियो में इस हफ्ते पेश है सादत हसन मंटो द्वारा लिखित गुरमुख सिंह की वसीयत, वाचक सनी मोजा, प्रस्तुतकर्ता नाटक।
पहले छुरा भोंकने की इक्का दुक्का वारदातें होती थी, अब दोनों तरफ से बाकायदा लड़ाई की खबरें आने लगी थी, जिनमें चाकू छुरों के अलावा किरपाने, तलवारें और बंदूकें भी आम तौर पर इस्तेमाल की जाती थी। कभी कभी तो देसी बम फटने की खबरें भी मिलती थी। अमृतसर में करीब करीब हर एक का ख्याल था कि ये सांप्रदायिक दंगे देर तक नहीं चलेंगे, जैसे ही ठंडा हुआ माहौल फिर अपनी असली हालत पर आ जाएगा। इससे पहले ऐसे कई दंगे अमृतसर में हो चुके थे जो बहुत देर तक नहीं चले थे। 10-15 दिन तक मारकाट का हंगामा रहता, फिर अपने आप शांत हो जाता। चुनांचे पुराने तजुर्बों के आधार पर लोगों का यही ख्याल था कि ये आग थोड़ी देर के बाद अपना जोर खत्म करके ठंडी हो जाएगी, लेकिन ऐसा ना हुआ, बल्कि जोर दिन पर दिन बढ़ता ही गया। हिंदुओं के मोहल्ले में जो मुसलमान रहते थे भागने लगे, इसी तरह हिंदू जो मुसलमानों के मोहल्ले में थे अपना घर बार छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर रुख करने लगे। पर यह इंतजाम सबके ख्याल में अस्थाई था, उस समय तक के लिए जब तक माहौल दंगों के जहर से पाक साफ ना हो जाए। मियां अब्दुल हई, रिटायर्ड सब जज, को 100% विश्वास था कि हालात बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। यही वजह थी कि वो ज्यादा परेशान नहीं थे। उनका एक लड़का था 11 बरस का, एक लड़की थी 17 बरस की। पुराना नौकर था जिसकी उम्र 70 के करीब थी। छोटा सा परिवार था। जब दंगे शुरू हुए तो मियां साहब ने काफी राशन घर में जमा कर लिया था। उस तरफ से बिल्कुल संतुष्ट थे कि अगर खुदा ना खास्ता हालात कुछ ज्यादा खराब हो गए और दुकान वगैरह बंद हो गई तो उन्हें खाने पीने के मामले में मुश्किल नहीं होगी। पर उनकी जवान लड़की सुग्रा बहुत चिंतित थी। उनका घर 3 मंजिला था, दूसरी इमारतों की अपेक्षा काफी ऊंचा। उसकी ममटी से शहर का 3/4 हिस्सा बखूबी नजर आता था। सुग्रा अब कई दिनों से देख रही थी कि नजदीक दूर कहीं ना कहीं आग लगी होती थी। शुरू शुरू में तो फायर ब्रिगेड की टनटन सुनाई देती, पर अब वह भी बंद हो गई थी, इसलिए कि जगह जगह आग भड़कने लगी थी। रात को अब कुछ और ही नजारा होता। गुप अंधेरे में आग के बड़े बड़े शोले उठते, मानो देव हैं जो अपने मुंह से आग के फव्वारे छोड़ रहे हैं। फिर अजीब अजीब सी आवाजें आती जो हर हर महादेव और अल्लाहू अकबर के नारों के साथ मिलकर बहुत ही भयानक बन जाती। सुग्रा अपने बाप से घर और घबराहट का जिक्र नहीं करती थी, इसलिए कि वह एक बार कह चुके थे कि डरने की कोई बात नहीं, सब ठीक ठाक हो जाएगा। मियां साहब की बातें अक्सर दुरुस्त हुआ करती थी, सुग्रा को इससे थोड़ा सा इत्मीनान था। पर जब बिजली कट गई और साथ ही नलों में पानी आना बंद हो गया तो उसने मियां साहब को अपनी चिंता बताई और डरते डरते राय दी कि चंद रोज के लिए शरीफपुरे चले जाएं, जहां अड़ोस पड़ोस के सारे मुसलमान आहिस्ता आहिस्ता जा रहे थे। मियां साहब ने अपना फैसला ना बदला और कहा, बेकार घबराने की कोई जरूरत नहीं, हालात बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। पर हालात बहुत जल्द ठीक नहीं हुए और दिन ब दिन बिगड़ते गए। वह मोहल्ला जिसमें मियां अब्दुल हई का मकान था मुसलमानों से खाली हो गया, और खुदा का करना ऐसा हुआ कि मियां साहब पर एक दिन फालिज गिरा, जिसकी वजह से उन्होंने चारपाई पकड़ ली। लड़का बशारत भी, जो पहले अकेला घर में ऊपर नीचे तरह तरह के खेलों में लगा रहता था, अब बाप की चारपाई के साथ लगकर बैठ गया और हालात की नजाकत को समझने लगा। वह बाजार जो उनके मकान से मिला था सुनसान पड़ा था। डॉक्टर गुलाम मुस्तफा की डिस्पेंसरी मुद्दत से बंद पड़ी थी। उससे कुछ दूर हटकर डॉक्टर गुरंदत्ता थे। सुग्रा काफी चिंताजनक थी। सुग्रा इतनी परेशान थी कि उसके होश हवास खो गए थे। बशारत को अलग ले जाकर उसने कहा, खुदा के लिए तुम ही कुछ करो, मैं जानती हूं कि बाहर निकलना खतरे से खाली नहीं, पर तुम जाओ किसी को भी बुला लाओ, अब्बा जी की हालत बहुत खतरनाक है। बशारत गया पर फौरन ही लौट आया। उसका चेहरा हल्दी की तरह पीला पड़ गया था। चौक में उसने एक लाश देखी थी, खून से ततर बतर, और पास ही बहुत से आदमी ठाठे बांधे एक दुकान लूट रहे थे। सुग्रा ने अपने डरे हुए भाई को सीने से लगा लिया और सब्र शुक्र करके बैठ गई, पर उससे अब अपने बाप की हालत नहीं देखी जाती थी। मियां साहब के शरीर का दायां हिस्सा बिल्कुल सुन्न हो गया था, जैसे उसमें जान ही ना हो। बोली में भी फर्क पड़ गया था और वे ज्यादातर इशारों से बातें करते थे, जिसका मतलब ये था कि सुग्रा, घबराने की कोई बात नहीं, खुदा की मेहरबानी से सब ठीक हो जाएगा। कुछ भी ठीक ना हुआ, रोजे खत्म होने वाले थे। मियां साहब का ख्याल था कि ईद से पहले पहले फिजा बिल्कुल साफ हो जाएगी, पर अब ऐसा लगता था कि शायद ईद का दिन ही कयामत का दिन होगा, क्योंकि अब शहर के करीब करीब हर हिस्से से धुएं के बादल उठते दिखाई देते थे। रात को बम फटने की ऐसी ऐसी भयानक आवाजें आती थी कि सुग्रा और बशारत पल भर के लिए भी सो नहीं पाते थे। सुग्रा को तो यूं भी बाप की तिमारदारी के लिए जगना पड़ता था, पर अब ऐसा लगता था कि ये धमाके उसके दिमाग के अंदर हो रहे हैं। कभी वह अपने लकवा मारे बाप की तरफ देखती और कभी अपने सहमे हुए भाई की तरफ। 70 बरस का बूढ़ा नौकर अकबर था, जो ना होने के बराबर था। वह सारा दिन और सारी रात अपनी कोठरी में पड़ा खांसता खर्राता और बलगम थूकता रहता था। एक दिन तंग आकर सुग्रा उस पर बरस पड़ी, तुम किस मर्ज की दवा हो, देखते नहीं हो मियां साहब की क्या हालत है? असल में तुम पहले दर्जे के नमक हराम हो, अब खिदमत का मौका आया तो दमई का बहाना करके यहां पड़े रहते हो। वह भी खादिम थे जो मालिक के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर देते थे। सुग्रा अपना जी हल्का करके चली गई। बाद में उसको अफसोस हुआ कि नाहक ही उस गरीब की इतनी डांट फटकार की। रात का खाना थाल में लगाकर उसकी कोठरी में गई तो देखा खाली है। बशारत ने घर में इधर उधर तलाश की पर वह ना मिला। बाहर के दरवाजे की कुंडी खुली थी, जिसका मतलब ये था कि वह मियां साहब के लिए कुछ करने गया है। सुग्रा ने बहुत दुआएं मांगी कि खुदा उसे कामयाब करे, लेकिन 2 दिन गुजर गए और वह ना आया। शाम का वक्त था। सुग्रा और बशारत ऐसी कई शामें देख चुके थे जब ईद के हंगामे होते थे, जब आसमान पर चांद देखने के लिए उनकी नजरें जमी रहती थी। दूसरे दिन ईद थी, सिर्फ चांद को ऐलान करना था। दोनों इस ऐलान के लिए कितने बेताब हुआ करते थे कि आसमान में चांद वाली जगह अगर बादल का कोई हठीला टुकड़ा जम जाता तो कितनी कोफ्त होती थी उन्हें, पर अब चारों तरफ धुएं के बादल थे। सुग्रा और बशारत दोनों ममटी पर चढ़े। दूर कहीं कहीं कोठों पर लोगों के साए धब्बों की सूरत में दिखाई देते थे, पर पता नहीं वे चांद देख रहे थे या जगह जगह सुलगती और भड़कती हुई आग। चांद भी कुछ ऐसा ढीठ था कि धुएं की चादर में भी नजर आ गया। सुग्रा ने हाथ उठाकर दुआ मांगी कि खुदा मेहरबानी करे और उसके बाप को तंदुरुस्त कर दे। बशारत मन ही मन कोफ्त महसूस कर रहा था कि गड़बड़ की वजह से एक अच्छी भली ईद खराब हो गई। दिन अभी पूरी तरह से ढला नहीं था, यानी शाम की सिहाई अभी गहरी नहीं हुई थी। छिड़काव किए हुए आंगन में मियां साहब की चारपाई बिछी थी। वह उस पर बेहिस लेटे थे और दूर आकाश पर नजरें जमाए जाने क्या सोच रहे थे। ईद का चांद देखकर जब सुग्रा ने पास आकर उन्हें सलाम किया तो उन्होंने इशारे से जवाब दिया। सुग्रा ने सर झुकाया तो उन्होंने वह बाजू जो ठीक था उठाया और उस पर प्यार से हाथ फेरा। सुग्रा की आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे तो मियां साहब की आंखें भी नम हो गई, लेकिन उन्होंने तसल्ली देने के लिए मुश्किल से अपनी लकवा मारी जुबान से ये शब्द निकाले, अल्लाह ताला सब ठीक कर देगा। ठीक उसी समय बाहर दरवाजे पर दस्तक हुई। सुग्रा का कलेजा धक से रह गया। उसने बशारत की ओर देखा, जिसका चेहरा कागज की तरह सफेद हो गया था। दरवाजे पर दस्तक हुई, मियां साहब ने सुग्रा से कहा, देखो कौन है। सुग्रा ने सोचा शायद बुड्ढा अकबर होगा। इस ख्याल से उसकी आंखें तमतमा उठी। बशारत का बाजू पकड़कर उसने कहा, जाओ देखो शायद अकबर आया है। ये सुनकर मियां साहब ने इनकार में यूं सर हिलाया जैसे वे कह रहे हो, नहीं अकबर नहीं है। सुग्रा ने कहा, तो और कौन हो सकता है अब्बाजी। मियां अब्दुल हई ने अपनी जुबान पर जोर देकर कुछ कहने की कोशिश की कि बशारत आ गया, वह बहुत डरा हुआ था। एक सांस ऊपर एक नीचे, सुग्रा को मियां साहब की चारपाई से एक और हटाकर उसने धीरे से कहा, एक सिख है। सुग्रा की चीख निकल गई, सिख क्या कहता है? बशारत ने कहा, कहता है दरवाजा खोलो। सुग्रा ने कांपते हुए बशारत को खींचकर अपने साथ चिपटा लिया और बाप की चारपाई पर बैठ गई और अपने बाप की तरफ वीरान नजर से देखने लगी। मियां अब्दुल हई के पतले पतले बेजुबान होंठों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट पैदा हुई। जाओ, गुरमुख सिंह है, बशारत ने इनकार में सर हिलाया। और कोई है? मियां साहब ने फैसले भरे स्वर में कहा, जाओ सुग्रा, वही है। सुग्रा उठी, वे गुरमुख सिंह को जानती थी। पेंशन लेने से कुछ समय पहले उसके बाप ने इस नाम के एक सिख का कोई काम किया था। सुग्रा को अच्छी तरह याद नहीं था, शायद उसको एक झूठे मुकदमे से बचाया था। तब से वह हर छोटी ईद से एक दिन पहले रुमाली सेवैया का एक थैला लेकर आया करता था। उसके बाप ने कई बार उससे कहा, सरदार जी आप ये तकलीफ ना किया करें, पर वह हाथ जोड़कर जवाब दिया करता था, मियां साहब वाहे गुरु की कृपा से आप सब कुछ हैं, ये तो तोहफा है जो मैं जनाब की खिदमत में हर साल लेकर आता हूँ। मुझ पर आपने जो एहसान किया था उसका बदला तो मेरी पुश्तें भी नहीं चुका सकती, खुदा आपको खुश रखे। सरदार गुरमुख सिंह को हर साल ईद से पहले सवैया का थैला लाते इतना अरसा हो गया था कि सुग्रा को हैरत हुई कि उसने दस्तक सुनकर ये क्यों ना ख्याल किया कि वही होगा। पर बशारत भी तो उसको दसियों बार देख चुका था, फिर उसने क्यों कहा कोई और है, और कौन हो सकता है? ये सोचती हुई सुग्रा ड्यूटी पर पहुंची, दरवाजा खोले या अंदर से ही पूछे। इसके बारे में अभी वह फैसला कर ही रही थी कि दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। सुग्रा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। बड़ी मुश्किल से उसने हलक से आवाज निकाली, कौन है? बशारत पास खड़ा था, उसने दरवाजे की एक झिरी की तरफ इशारा किया और सुग्रा से कहा, इसमें से देखो। सुग्रा ने झिरी में से देखा, गुरमुख सिंह नहीं था, वह तो बहुत बूढ़ा था, लेकिन ये जो बाहर दरवाजे पे खड़ा था जवान था। सुग्रा अभी झिरी पर आंख जमाए उसका जायजा ले ही रही थी कि उसने फिर दरवाजा खटखटाया। सुग्रा ने देखा कि उसके हाथ में कागज का थैला था, वैसा ही जैसा गुरमुख सिंह लाया करता था। सुग्रा ने झिरी से आंख हटाई और जरा ऊंचे स्वर में दस्तक देने वाले से पूछा, कौन है आप? बाहर से आवाज आई, जी मैं सरदार गुरमुख सिंह का बेटा हूं, संतोख। सुग्रा का डर बहुत हद तक दूर हो गया। बड़ी शिष्टता से उसने पूछा, फरमाइए आप कैसे आए हैं? बाहर से आवाज आई, जी जज साहब कहाँ हैं? सुग्रा ने जवाब दिया, बीमार हैं। सरदार संतोख सिंह ने खेद भरे स्वर में कहा, ओह। फिर अपना कागज का तैला खड़खड़ाया, जी ये सेवैया हैं, सरदार जी का देहांत हो गया है, वे मर गए हैं। सुग्रा ने जल्दी से पूछा, मर गए हैं? बाहर से आवाज आई, जी हाँ एक महीना हो गया, मरने से पहले उन्होंने मुझे ताकीद की थी कि देखो बेटा मैं जज साहब की खिदमत में पूरे 10 बरस से हर छोटी ईद पर सेवैयां ले जाता रहा हूँ, ये काम मेरे मरने के बाद तुम्हें करना होगा, मैंने उन्हें वचन दिया था सो पूरा कर रहा हूँ, सेवैयां ले लीजिए। सुग्रा पर इस बात का इतना असर हुआ कि उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने थोड़ा सा दरवाजा खोला, सरदार गुरमुख सिंह के लड़के ने सेवैयां का थैला आगे बढ़ा दिया जो सुग्रा ने पकड़ लिया और कहा, खुदा सरदार जी को जन्नत नसीब करे। गुरमुख सिंह का लड़का कुछ रुककर बोला, जज साहब बीमार हैं? सुग्रा ने जवाब दिया, जी हाँ। क्या बीमारी है? फालिज। ओह, सरदार जी जिंदा होते तो उन्हें यह सुनकर बहुत दुख होता, मरते दम तक उन्हें जज साहब का एहसान याद था, कहते थे कि वह इंसान नहीं देवता हैं, अल्लाह मियाँ उन्हें जिंदा रखे, उन्हें मेरा सलाम कहिएगा। और यह कहकर वह चबूतरे से उतर गया। सुग्रा सोचती ही रह गई कि वह उसे ठहराए और कहे कि वह जज साहब के लिए किसी डॉक्टर का बंदोबस्त कर दे। सरदार गुरमुख सिंह का लड़का संतोख सिंह जज साहब के चबूतरे से उतरकर चंद गज आगे बढ़ा तो ठाट बांधे हुए 4 आदमी उसके पास आए। 2 के पास जलती मशालें थी और 2 के पास मिट्टी के तेल के 3 और कुछ दूसरी आग जलाने की चीजें। एक ने संतोख से पूछा,
क्यों सरदार जी अपना काम कराए?
संतोख ने सर हिला के जवाब दिया,
हाँ कराया।
उस आदमी ने ठाठे के अंदर हंसकर पूछा,
तो क्या कर दे मामला ठंडा जज साहब का?
हाँ जैसी तुम्हारी मर्जी।
ये कहकर गुरमुख सिंह का लड़का चल दिया।